الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی شروعات انشاءاللہ سورہ اعراف سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ 7 سورت ہے قرآن کی اور نزول کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے والی صورتوں میں یہ ایک روایت کے مطابق 39 صورت ہے یہ بالاتفاق مکی صورت ہی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ٹوٹل 206 رکوع ہیں آیات ہیں سوری اور 24 رکوع ہیں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں ٹوٹل اس صورت میں اس کو صورت کو اعراف کہنے کی بیسک وجہ آگے چل کے آئے گی انشاءاللہ آیت نمبر 46 سے 49 آنورڈ جو جنت اور جہنم کے درمیان کا ایک مڈل میں لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہ وہ خطاب ہو رہا ہے تو اس کا انشاءاللہ آگے اپنے مقام پہ ذکر آئے گا بہرحال اس میں بیسکلی اللہ کی بڑی نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ قرآن کے بارے میں قرآن ایک دائمی کیونکہ معجزہ ہے اور سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اس سے ہی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے اور جیسے اللہ خود قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اس کتاب میں ہر چیز کا آنسر ہے ہدایت ہے اور یہ قرآن ایک رحمت ہے اسے رحمت خود قرآن نے کہا اور یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہی اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اللہ نے عطا کیا اور پھر اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کے واقعات آتے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے سٹارٹ ہوتے ہیں سورت میں واقعات اور پھر آگے اور مزید نوح علیہ السلام اور عاد و ثمود اور صالح اور موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے قصے آئیں گے آگے اور سٹارٹنگ میں کیونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے یہاں پہ اور یہ انسانیت کے حوالے سے پہلی چیز اس میں یہ نوٹ کرنے کی ملتی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں ہیومن ریس ہے یہ اس پہ یونینیمس ہے پوری دنیا کہ یہ کسی ایک اس کی پروجنی اس کی ٹوٹل اوپر جا کے آدم علیہ السلام سے ملتی ہے یا کسی ایک پرٹیکولر جو ایتھیس بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی ایک پرٹیکولر اس سے مانے گا اور آدم علیہ السلام اگر ہم غور کرتے ہیں آیت نمبر 11 کے اندر 11th آیت میں تو اس میں اس حوالے سے سب سے پہلے تو ان کی ایک انسان کی تکریم کا ذکر ہمیں تھوڑا سا ملتا ہے اس میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدے کا حکم دیا آدم کے سامنے فرشتوں کو یعنی پہلے جو مخلوق ایگزسٹ کرتی تھی اس کو سبارڈینیٹ قرار دینے کی سائن کے طور پہ کہا کہ تم اس اعلیٰ مخلوق کو سجدہ کرو اور آف کورس شیطان نے اس کے ذمن میں یہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ شیطان کا جو مکر و فریب تھا اس کے بارے میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلے ہمیں مقام سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ایک روایت کے مطابق جب اللہ نے آدم علیہ السلام نے کی ایک دعا ہمیں قرآن میں ملتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا الى آخر الدعا تو اس رب اس دعا کے اندر یہ جو قرآن میں ہمیں آدم علیہ السلام کی دعا ملتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اس دعا کو آدم علیہ السلام غالباً جب وہ جنت سے نکالے گئے اور 40 سال تک پڑھتے رہے تب جا کے جو مکہ میں ادھر ان کی فائنلی ہوا سے ملاقات ہوئی لیکن ایک دعا ہمیں ایک دوسری روایت میں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے جب یہ دعا مانگی کہ میں آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دیجئے تو اللہ نے کہا کہ آپ میرے حبیب یعنی کہ ہی واز ریفرنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں تو آدم علیہ السلام نے رپلائی کیا لما خلقتنی بیدک ونفخنا فيه من روحك رفعت راسي و عرش مکتوبہ والی ایک روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، انہوں نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں، آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی اور میں نے جب اپنا سر رفع تراسی اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا ہمیں۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا خاص طور سے کیونکہ یہاں پہ ذکر چل رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی چار ڈفرینٹ طریقے سے انہیں پکارا جا رہا ہے یا بنی آدم کے طور پہ۔ اب یا بنی آدم میں ٹوٹل انسانیت آ جاتی ہے، ٹوٹل جتنی بھی انسانیت ہیومن ریس، اس میں صرف کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی کافر ہو، یہودی، جو، کرسچن، ایتھیس، کچھ بھی ہو، بٹ وہ ہوگا الٹیمیٹلی کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یا بنی آدم مینس کل انسان، یعنی کہ ایوری ہیومن بینگ از بینگ ایڈریسڈ ان دیز آیات۔ ان آیتوں کے اندر جو پوری انسانیت کے لیے احکامات مل رہے ہیں، اور فائنلی پھر اس کا ہمیں کنکلوژن آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 179 میں پتہ چلے گا کہ فائنلی ان سب نصیحتوں اور ان کی خطاب اللہ کے کرنے کے باوجود اینڈ میں آدم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا، سوری معاذ اللہ، آدم علیہ السلام کی اولادوں کا کیا حال ہوگا، تو اس کا آگے 179 میں ذکر آئے گا۔ لیکن فرسٹ، پہلے، سب سے پہلے اللہ نے ان کو آیت نمبر 26 میں پکارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوری الی آخر الآیات، کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اب یہاں پہ کی پوائنٹ ایک غور کیجئے گا کہ لباس کا لفظ ہے، ہم نے تمہارے لباس اتارا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے اور تقوی کا لباس سے بہتر ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں لفظ لباس آیا، اور پھر فوراً اگلی آیت میں 27 آیت میں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان الی آخر الآیت، کہ تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈلوا دے کسی طرح سے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کر سکتا ہے، کہیں شیطان تو کسی کو بھی بہکا سکتا ہے۔ اور پھر تھرڈ دفعہ دوبارہ ان کو پکارا اللہ نے، جو ان کو ندا دی وہ آیت نمبر 31 کے اندر جا کے، یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد الی آخر الآیت۔ یہاں پہ پھر دوبارہ وانس اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت، یعنی لباس، دوبارہ لباس کی طرف اشارہ ہے، لے لو، اور یعنی اپنے آپ کو کورڈ رکھو، اپنے آپ کو ڈریس اپ پراپرلی ان اے ماڈسٹ وے، یہ اس کا ایک طرح۔ اور فورتھ آیت میں پھر آیت نمبر 35 کے اندر جا کے فائنلی، یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئیں جو تم میری بات سنائیں، تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی تقوی کو اور اپنی اصلاح کرنے کو، دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ لباس کا پہلے تعلق تین، جو دو ان چار میں سے دو میں لباس کا، اور پھر شیطان تمہیں دھوکہ نہ ڈال دے، اور یہاں پہ پھر خصوصاً تقوی اس کا، کہ دو چیزیں جو کرکس ہے اس کا سب کا، وہ یہ ہے کہ انسان میں تقوی ہے اور اسے اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ جسے اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اگر جو یہ سمجھ کے بیٹھ گیا جس دن کہ میری تو مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے چل کے شیطان کے بارے میں، کہ یہ جو شیطان ہے یہ بہت ہی از کننگ اینڈ شاطر اینڈ شروٹ قسم کا مخلوق ہے اللہ کی، اور اس سے بچنے کے لیے جو انسان کو ضروری جتنی بھی اس کے لیے پریپریشن اور ضروری جتنی بھی اس کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، وہ اس کو اسے کر کے رکھنی چاہیے، تاکہ وہ شیطان سے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر اپنے ساتھ کسی طرح سے چل کرتا رہے۔ اور یہاں پہ نقطہ دین اگین اگر ہم غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے شیطان نے یہاں پہ لباس اتروا دیے تھے، ان کا مین جو ان سے خطا ہوئی وہ یہ ہوئی، اس کی باتوں میں آ کے ان کے، کیونکہ لباس اترے، گویا ابلیس کا سب سے جو بڑا ہدف ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نشانہ، جو اس کا مشن ہے، دیٹ از کہ اولاد آدم جو ہے اس کے اندر سے شرم اور حیا کا جو کریکٹرسٹک ہے، پہلو ہے، اور اس کے لباس سے اس کو محروم کر دے۔ آج کی اگر ہم ماڈرن ویسٹرن سولائزیشن اور لبرل اور ओपन माइंडेड के नाम पे, और पता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग कितने किस्म के डिफरेंट फितने फसाद। और ये अगर हम गौर करें आगे चल के मूसा अलैहिस्सलाम की हम स्टोरी में देखेंगे, जब इसकी इसी सूरत के एंड में आएगी कि जब शैतान, जब फिरौन ने को फाइनली जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को जादू के लिए चैलेंज किया और बुलाया, तो अपने जब मुशीरों से उसने मशवरा किया, उन्होंने कहा युरीदाकुम युखरिजाकुम, ये आगे चल के अपने मकाम पे बात आएगी। उस वक्त भी उनका मेन जो था वो कोई उनसे मूसा अलैहिस्सलाम का जो टारगेट था वो फिरौन से उनकी ज़मीन कब्ज़े में करना नहीं था, वो उनसे उन्हें कॉन्कर करना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने वो सिर्फ कहते थे हमें तो खामोशी से जाने दो, लेकिन जब वो और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह की दावत उनके पास लेके आए, उनका मकसद उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करना कभी भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उस क्या कहा कि ये हमारी सोच पर, हमारी मेंटेलिटी पर कब्ज़ा करना चाहता है, ये चाहता है कि जो हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, जो हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस हैं, ये उनको ब्रेक करना चाहते हैं। और यही काम अगर हम गौर करें तो मक्का में नबी अलैहिस्सलाम के जो सात कफ़ार ने किया, आप गौर करें अगर, तो अबू जहल हो या अबू लहब हो, वो उसी खाना काबा का तवाफ़ करते थे जिसको आज हम मुकद्दस तरीन इमारत दुनिया की समझते हैं, अल्लाह का घर है और यकीनन है, और उस घर का तवाफ़ अबू जहल और अबू लहब भी करते थे। फिर फ़र्क क्या था? नबी अलैहिस्सलाम की बात मानने से उन्हें अपना विल, फ्री विल छोड़नी पड़ जाती थी। अगर वो बात मान लेते तो अपनी हठधर्मी कैसे करते, अपनी मनमानी कैसे करते? तो आज का जो हमारी कॉन्सेप्ट है, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसको बिल्डअप इस तरह से किया गया है कि हम अपने ओपन माइंडेडनेस के नाम पे और बोल्ड होने के नाम पे और लिबरल होने के नाम पे और सेवरल किस्म के डिफरेंट टाइटल्स हों, उसके आड़ में उसकी उसको लेकर हम बेसिकली जो सबसे बड़ा खत हमला हम पर हो रहा है वो हमारे लिबास पर हो रहा है, हमारी हम अपनी जीनत को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को, अपने नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज़ को भुला कर किसी ना किसी तरह एक वन वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, ये आगे चल के इंशाल्लाह सूरह काफ में बहुत डिटेल में डिस्कस होगा मसला, उसको लेके हम लोग इतना आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि उसी फितने में जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, हमारे आबाओ अजदाद जो सबसे, जिनसे पूरी दुनिया की, हर इंसानियत की, पूरी ह्यूमैनिटी की प्रोजनी जिस जो हैं, उनके साथ जो हमला शैतान ने किया, आज हमारे साथ शैतान बिल्कुल एग्जैक्टली वही हमला कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे इसके बाद आगे चल के, जो वो भी एग्जैक्टली यही करते थे, वो खाना काबा का न्यू तवाफ़ किया करते थे बगैर कपड़ों के, और उसकी दलील वो ये देते थे कि हमारे आबा अजदाद ने भी यूं ही किया है, या कभी कभार वो ये कहते थे कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो यहाँ पे भी देखें अल्लाह ने उनके दावे की तरदीद की, अल्लाह बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देता। और इस्लाम जो है बेसिकली ये बिल्कुल एक एतदाल और जायज़ मुतालबात, जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी अपनी सोच, हर इंसान की जो लॉजिकल आदमी होगा उसकी तरह से चलने वाली साइकोलॉजी होगी। यहाँ तक कि अगर हम आयत नंबर 32 में देखें, कुल मन हरमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखराज अलवादी व तय्यिबात मिन रिज़्क, इस पूरी आयत के अंदर लाखर लायब हम देख रहे हैं कि बाकायदा रहबानियत, जो सूफी जम्बा सूफी हैं जी, कोने पे बैठे हैं, चिल्ले मुराकबे चल रहे हैं, वो जी हम बहुत अल्लाह वाले हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड अल्लाह वाले भी कई बीच में निकल आते हैं फिर ऑफकोर्स, और बहुत बहुत से इसके अंदर जाली और दो नंबर लोग भी निकल आते हैं। और इसके मसले की असल जड़ यही होती है, इंसान इस्लाम ने तो रहबानियत का इस्लाम दीन ही नहीं है। अल्लाह तो कह रहे हैं मन हरमा ज़ीनत अल्लाह ही, कि तुमने अपने ऊपर वो हराम कैसे कर लिया जो अल्लाह ने हलाल किया है। अल्लाह, ये तो अल्लाह के हाथ में हराम या हलाल का ताल्लुक। और इसी के जिम में अगर एक रिवायत में पता चलता है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उनका अमल ये था कि वो पूरा दिन में रोज़े रखते थे और रात में अक्सर अवकात इबादत में मशगूल रहते थे, तो पूरा पूरा दिन के रोज़े और रात को क़याम करना उनका यह अमल था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला तो उन्होंने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को जाके नसीहत की कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का भी हक़ है, तुम्हारे नफ्स का भी हक़ है, तुम्हारे घर वालों का भी हक़ है, लिहाजा हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा करो, यानी कि अपने लिए भी कुछ करो, अपने अल्लाह के लिए अल्लाह का हक़ अदा करो, अपने घर वालों का, बीवी बच्चों का, अपने जो अपनी बॉडी, अपनी जिस्म, अपना जान, सबका हक़ अदा करो। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इसका जिक्र नबी अलैहिस्सलाम से किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सलमान ने सच कहा है, सलमान इज़ राइट। ये सब हुकूक की अदायगी ज़रूरी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इंसान रहबानियत का मज़हब नहीं है। इस्लाम बिल्कुल एतदाल और बिल्कुल म्याना रवि एंड बिल्कुल हर किस्म की चीज़ों को साथ ले के चलने वाला मज़हब है। अननेसेसरी किसी चीज़ में इस्लाम मुदाखलत भी नहीं करता इंसान की ज़िंदगी में। हाँ, अनलेस वो उसके अपने लिए नुकसानदेह हो या माशरे के लिए नुकसानदेह हो तो डेफिनेटली। एनी हाउ, फिर इसके आगे चल के हम देखते हैं आयत नंबर 38 में दो डिफरेंट ग्रोहों का जिक्र है, जन्नत वाले और एक जन्नती हैं एक का जहन्नुमी हैं। कुल कौलाद उत खलूफ़ी उम्मन कत खलत मिन कबल को मिन अलजन्नी वलिनसी वन्नारी कुल्लमा दखलत उम्मत इज़ा इला आखिर आयत। या आगे चल के इन आयतों के अंदर इन दोनों का आपस में जो मुकालमा है, कॉन्वर्सेशन है, ये यहाँ पे हमें नज़र आती है। आयत नंबर 44 में अगर हम ख़ास तौर से गौर करें, वह नादा असहाबुल जन्नत या असहाबुन नार इला आखिर आयत, कि असहाबुल जन्नत जो होंगे वह असहाबुन नार को पुकारेंगे और अहले जन्नत जो होंगे उन दोजखियों से बेसिकली दे विल क्वेश्चन देम, क्या तुम्हें आज अल्लाह के वादों के सच होने का यकीन आया या नहीं। तो दोजखी उनको जवाब देंगे कि हाँ, हमने वादों को सच्चा और बरहक पाया। और फिर इसी के आगे अब फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो आयत नंबर 46 में, व बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ रिजालुन यारिफूना इला आखिर आयत। 46 नंबर आयत से ये थर्ड ग्रोह का जिक्र है। एक तो ऊपर जन्नत जन्नत और जहन्नमियों का जिक्र आया, वापस में उनका कॉन्वर्सेशन का जिक्र आया, कि जिस यहाँ पे कुरान ने इस थर्ड ग्रुप को बेसिकली असहाब आराफ कहा। और ये लोग जो हैं ये बेसिकली ये होंगे तो मोमिन, लेकिन आमाले सालिया में दूसरे जन्नतियों से ये थोड़ा पीछे रह गए होंगे, इस वजह से दे विल बी बैन बैन समवेयर इन द सेंटर। तो बहरहाल इन दी एंड ज़ाहिर ऑफ कोर्स मन कान आखिरु कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो वो जन्नत में इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ज़रूर जाएगा। तो इस इन्हें भी अल्लाह ताला ज़ाहिर है एक ना एक दिन जन्नत में बेशक किसी कोई शक नहीं है कि डालेंगे और वो जाएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तौहीद के जो बेसिकली तीन अहम किस्म के हम समझें कि दलाइल अल्लाह ने यहाँ पे दिए हैं हमें, आयत नंबर 54 ऑनवर्ड्स, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अल अर्श यग्शी अल-लैला अन-नहार इला आखिरिल आयत। के पहली जो इसमें दी है कि ये सात आसमान जो हैं ये इधर खड़े हुए हैं और बग़ैर किसी पिलर के खड़े हुए हैं। ये अल्लाह का एक इन इट सेल्फ इतना बड़ा मोजज़ा है कि आज तक कोई साइंस इसका जवाब नहीं दे सकी। फिर सेकंड मोजज़ा यहाँ पे जो बयान किया गया रहमान के अर्श का और उसकी कुर्सी का, कि जो अर्श है वो पूरे दुनिया के आसमान और ज़मीनें सब कुछ पूरा यूनिवर्स मिल के भी उसका अहाता नहीं कर सकता, उसे सराउंड नहीं कर सकता। और फिर कुर्सी उस वो अगर ऊपर रखी जाए तो वो पूरे ही जो पूरी यूनिवर्स है उसको क्रॉस कर जाए, उससे लार्ज हो, फिर अर्श का क्या बात होगी। तो इन चीज़ों को बेसिकली पीछे भी है, जैसे लास्ट सूरत के अंदर अलमन गुजरा था कि इस सवाल अल अर्श या कुछ इस तरह का जो अल्लाह की सिफात होंगी उन्हें हम सिर्फ इस कैपेसिटी में समझेंगे कि इनका मायना सिर्फ हरूफ मुकत्तआत की तरह अल्लाह पाक सुबहाना व ताला ही जानते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम सिर्फ उसे एज़ इट इज़ कोट कर सकते हैं जो कुरान में है, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी हर बात का हर जवाब हर बंदे को मिलना इम्पॉसिबल है। ये हमारे यूनिवर्स की एक सुन्नत है, एक साइकोलॉजी है। और इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आगे चलें इसकी कैफियत से आप इसको देखें, क्योंकि आगे सूरज का चांद सितारों का जो तख्लीक का जिक्र आ रहा है, तो एक बहुत ही जो फेमस आजकल के बिगेस्ट साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, या सबसे बड़े जो एथियज़म के जो सबसे बड़े अलब बरदार हैं, जो उसके लीडर हैं, नील डिग्रास टाइसन साहब, ही इज़ अ वेरी गुड साइंटिस्ट। ओके, ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनके पास बहुत नॉलेज है और ही इज़ आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट, नो इफ़ नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, ख़ास तौर से एस्ट्रोनमर, उनके पास जो यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च है। और वो ये साइंटिस्ट बात करते हैं, ही इज़ ऑफ़ द ओपिनियन के द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग, जैसे कुरान ने भी कहा यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। लेकिन वो ये कहते हैं कि साइंस आज तक इस बात को जान नहीं सकी, या वी आर स्टिल अनएबल टू फाइंड कि जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, दुनिया, यूनिवर्स के अंदर इतनी सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप जो घूम रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी एक तो ग्रेविटी है। जैसे दुनिया के अंदर एक ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी ना हो तो हम लोग तो ज़मीन पर टिक ही ना सकें, हम लोग खड़े ना हो सकें, हर चीज़ हवा में उड़ रही हो। ये ग्रेविटेशनल पुल है जो हमें ज़मीन पर बिल्कुल खड़ा रखती है, हर चीज़ को ज़मीन की फ्लोर के साथ। इसी तरह हर सितारे, हर स्टार, हर प्लैनेट, हर उस कॉमेट, रॉक, हर चीज़ का अपनी अपनी ग्रेविटी है जो मूव कर रही है, और वो बहुत स्पीड से पूरी यूनिवर्स में रिवॉल्व करते हुए दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसके बावजूद, बजाय वो अट्रैक्शन के, जो चीज़ें आपस में करीब आने के, यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो नील डिग्रास सेज, वी डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट टिल दिस डे, बिकॉज वी आर स्टिल अनएबल टू एक्सप्लोर द होल यूनिवर्स। तो ये अगर बिगेस्ट जो आजकल का साइंटिस्ट हो उसका ये ओपिनियन हो, तो हम लोग कौन होते हैं इनके बारे में, ऑफकोर्स इन आयात के बारे में कुछ भी जानने या समझने वाले। और फिर इससे आगे अगर हम देखते हैं, फिर 59th आयत से ऑनवर्ड्स ये तकरीबन रफली 6 अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के जिक्र आ रहे हैं। आयत नंबर 59 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत पीछे आगे 65 आयत में हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर 74th आयत में सालेह अलैहिस्सलाम का, फिर 80 आयत में लूत अलैहिस्सलाम का ऑनवर्ड्स, फिर शोएब अलैहिस्सलाम का 85th आयत में, और देन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आयत 103 103 से इनके वाक़यात शुरू हो जाते हैं। इनके 6 डिफरेंट डिफरेंट वाक़यात, 6 के 6, इनका इनके अंदर एक जो बिल्कुल एक चीज़ जो कॉमन मिलती है वो यही थी कि सब ने दावत दी, सबकी कौमें काफिर रहीं एंड तक, और उन पे अल्लाह के अजाब आए, और बहरहाल उनको, उनकी दावत को वहाँ के लोगों ने, अक्सर ने कबूल नहीं किया, कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया, ऑफ कोर्स हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हवारियों तो थे। तो इनके किस्से बाकायदा आ रहे हैं, लेकिन इन किस्सों से जो बेसिक क्रक्स है वो, और नबी अलैहिस्सलाम को बेसिकली तसल्ली दी जा रही है कि आप इनसे परेशान ना हो, जो कुफार आपको जुल्म और सितम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इन 6 अम्बिया कराम के बारे में बातें करने का मकसद ये है कि उनको तसल्ली हो कि इससे पहले भी अम्बिया के साथ इसी किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। पहले अगर गौर करें तो जो मुतकब्बिर होते हैं उनका अंजाम अल्लाह ने बताना चाहा, या यही बताना चाहा कि अल्लाह कैन बी लेट बट नॉट रॉन्ग, और नेवर ही इज़ देर है, अंधेर नहीं है, तो एक ना एक दिन जालिम को सज़ा मिलकर रहती है। ऐसा उसका जुल्म हमेशा कायम नहीं रह सकता, ये अल्लाह की सुन्नत है। उसका एक ना एक दिन सारा जुल्म और उसका जो ऑपरेशन है वो ख़त्म होकर रहेगा। और इस पे फिर नबी अलैहिस्सलाम की एक सच्चाई की, ट्रू मैसेंजर होने की भी दलील मिल जाती है कि फॉर्स ये जो वाक़यात हैं सारे, ये बिल्कुल सही सही बयान कर रहे हैं आपकी ज़बान, जबकि आप तो उस ज़माने में वाक़यात में थे भी नहीं। और बिल्कुल जो ट्रूथ, सही तरह फैक्चुअल बेसिस के ऊपर करेक्ट वाक़यात आप बयान कर रहे हैं, और इसमें हर किस्म के इंसानों, जैसे पीछे क्योंकि बनो आदम का गुज़रा, तो तमाम के तमाम इंसानों के लिए एक सोच और गौर फिक्र करने की बात है इस पे, कि पॉन्डर करें इंसान, सोचे, अफलाया तदब्बरून नल कुरान, के कुरान में पॉन्डर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ये सूरह, फिर आगे अगर हम इसमें ही यहाँ पे देख रहे हैं, सूरह शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो थे, इन्होंने अपनी कौम को बहुत ज़्यादा रोका बुराइयों से, और उनके फितने फसाद पे जब रोक टोक करने की कोशिश की, जो उनके कौम कौम के सरदार थे, उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को बाकायदा धमकी दी कि हम तुम्हें, वी विल एग्ज़ाइल यू फ्रॉम आर लैंड, यानी अपनी बस्ती से तुम्हें हम बाहर निकाल देंगे, या ये कि दूसरी सूरत यह कि तुम हमारे दीन पर आ जाओ सीधी तरह से, यार इस तरह की धमकियां देने की कोशिश की। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने, यहाँ आयत नंबर 94 में देखें अगर हम गौर करें, अमार सल्नाफ़ी करियत में नबीन ला खजना आला वबिलबासी वज़र्राउन, यहाँ से ऑनवर्ड्स तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया। तो उसके इससे हमें इन सारे वाक़यात से अल्लाह की जो सुन्नत है उसका पता चल रहा है, अल्लाह का जो दस्तूर है, जैसे कि अल्लाह किसी भी कौम पर कोई ना कोई पहले नबी को भेजते हैं, और ये सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम नहीं, इन सब के अम्बिया के जितने भी वाक़यात ऊपर आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम से हैं, आहूद, सालेह अलैहिस्सलाम, सब के, और मूसा अलैहिस्सलाम का आगे आएगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ क्योंकि आयत नंबर 94 में गौर करने की बात, ये अल्लाह का दस्तूर एक बयान हो रहा है कि अल्लाह किसी ने सब के सामने पहले एक उन्हें वार्नर, एक मैसेंजर, एक वार्निंग कर देने वाला, एक समझाने वाला, नज़ीर नज़र जिसको कहा गया, वो भेजा जाता था, उसे समझाने की कोशिश करता था, और शायद इसलिए कि वो उनकी तरफ लौट आए अल्लाह की तरफ। फिर जब सख्त इस नरमी से और बिल्कुल आसान तरीके से लोग बात नहीं समझे, तो इनमें सब के सब में एक जो कॉमन फैक्टर हमें मिला वो ये था कि उन सब की कौमें अल्टीमेटली अजाब उनको मिला, और वो सब के सब गरक हो गए अल्लाह के अजाब में। तो इस पॉइंट से अगर गौर करें तो अल्लाह ताला एक तरह से फिर आगे, अब आगे चल के आयत नंबर 101 से अगर हम गौर करें, तिलकल कुरआन नक़ुस अलैका नबिन नबा अनबाइहा वलक़द जातहुम रुसुलुम बिल बय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़बू इला आखिर आयत। नबी अलैहिस्सलाम को एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं अल्लाह ताला के ये सब के सब अम्बिया से ऐसे ही मामलात किए कुफार ने और इन बुरे लोगों ने, तो आप गम ना कीजिए। और वमा, फिर आगे आयत नंबर 103 से ऑनवर्ड्स अगर हम गौर करें, तो सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरौन व मलाई फज़लमू बिहा इला आखिर आयत। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन जितनी मेजर इसके अंदर है, सबसे पहली की पॉइंट्स गौर करने का है कि इस यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का जिक्र आ रहा है कि जो अल्लाह ताला ने मौजज़ात उन्हें अता किए थे, बहुत ही असा है उनका जो फेमस स्टिक थी, या बैज़ा यानी हाथ उनका जो चमकने लगता था सिल्वर की तरह, तो इस तरह के आगे किस्से में आएंगे सारे। तो इसके बैकग्राउंड में अगर समझेंगे, बनी इसराइल जो थे वो असल में जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टाइम से पहले थोड़ा, या उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कहत का जो मशहूर सूरह यूसुफ़ में वाक़ आएगा आगे चल के, उस टाइम पे बहुत सारे जो बनू इसराइल थे वो इजिप्ट शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ पैलेस्टाइन में उनके लैंड में कहत था, यानी कि ड्राई, बहुत ड्राई, और क्रॉप नहीं हो रही थी, और इस तरह का सिलसिला था। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फिर जब आए वहाँ पे, और वो ज़ाहिर है फाइनली वहाँ के अजीज़ मिस्र भी बने, तो उस वक्त फिर और वो वहाँ जाके आके सेटल होना शुरू हो गए बनू इसराइल, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ऑफ कोर्स ही वाज़ द सन ऑफ इसराइल, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके 12 भाई, दैट्स द फेमस बनू इसराइल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये लोग सारे यहाँ पे आके आबाद हो गए, पूरा ख़ानदान यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के टाइम पे ही। और इस किस्से के अंदर फिरौन ने जो मुतालबा किया सबसे पहले, हकीकुल्लाकुम फ़ारसल माई बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम से जो फिरौन ने जो फिरौन से सिर्फ इतना कहा था कि हमें इस बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दो, मतलब और कुछ नहीं कहते थे उन्होंने उससे, कॉन्कर, जहाँ जो सूरत के शुरू में बात आई थी अल्लाह कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कोई कॉन्कर करने के लिए नहीं कहा, बस सिर्फ इतना कहा कि इनको, लोगों को मेरे साथ जाने दो, मेरी कौम को। तो फिरौन ने आगे आयत नंबर 106 में कहा, इनको तजी तब आयत इन फातिब बिहा इन कुन तमिन सादिकीन, कि तुम मुझे कोई मौजज़ा दिखाओ। तो आगे से फ़ालका आसाउ फ़ैज़ा या सौबान मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला ज़मीन पे, तो वो एक बड़ा सा ब्लैक सांप, कोबरा जैसे सॉर्ट ऑफ, या उससे भी बड़ा कोई एनाकोंडा टाइप, पता नहीं क्या बन गया उस ज़माने में, जो भी अल्लाह वालम उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। सौबान मुबीन वैसे अगर देखेंगे तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा काला सांप बनता है, वल्ला वालम। फिर आगे आयत नंबर 108 वनाज़ा यदाउ फ़ैज़ा या बैज़ाउ, ये जो पीछे दूसरा ये उनका मौजज़ा, उसने उन्होंने अपना हाथ जैसे अपने आर्मपिट में या अपने बगल में यहाँ डाला और निकाला, तो वो एक चमकने लगा बिल्कुल सिल्वर की तरह। और एक ये तफसीर तबरी वगैरह और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह इनकी जो तफासीर है उनमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये भी लिखा हुआ है कि जब फ़िरौन ने लाठी को सांप बनते हुए देखा तो डर के मारे तख्त से छलांग मार दी और भाग खड़ा हुआ। तो खैर एनी हाउ, ये एक इन तफसीर में ये वाकया भी इसके हवाले से लिखा है कि फ़िरौन ने जंप लगाई और डर के वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अच्छा, फ़िरौन ने अपने सारे, फिर बहरहाल जब ये सांप बना और वो डर गया, तो उसने अपने सारे जो मुशीर थे, जो उसके एडवाइज़र्स थे, उनको बुलाया, सा आपस में मशवरा किया। अब यहाँ पे ये वो आयत है जहाँ शुरू में अभी बात जब चली थी जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की, युरीदो युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फ़माज़ा तअमुरून, ये इन आयतों के अंदर काला मलाउ मिन कौमे फिरौन इन हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कि ये एक बहुत बड़ा जादूगर है, आपको आपके इस मुल्क से ख़त्म करना चाह रहे हैं। हालांकि असल में तो वो सिर्फ़ उन्होंने अभी ऊपर हमने पढ़ा सिर्फ यही कहा था कि हमें यहाँ से जाने दो। फिर आगे चल के आयत नंबर इनका मुकाबला आता है आयत नंबर 111 से ऑनवर्ड्स, कॉल उर्जी वाखाव फरसिल फिल मदायन, के एक बड़े से मकाम में एक बड़ा सा उन्होंने ग्राउंड कोई सिलेक्ट किया, और कोई उनका गालबन एक रिवायत में आता है कि कोई बड़ा ओकेज़न होता है, कोई ईद टाइप का कोई सेलिब्रेशन या कोई मेला टाइप, कि जी वहाँ पे हमारा मुकाबला होगा, तुम जाओ अपने भाई के साथ। और फिरौन ने कहा कि हमारा मुकाबला होगा जादू का मुकाबला, ये उस ज़माने में। ये सूरह बनी इसराइल में इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर बात होगी कि हर ज़माने के जो सोच थी एक के बनू इसराइल के अंदर ज़्यादातर जादू का, और फिर उसके बाद फाइनली ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियंस के अंदर स्पिरिचुअलिटी का, और ये सारे जो मामलात हैं, और फिर इस्लाम में इन दोनों को कंबाइन किया गया, इस पर इंशाल्लाह बात करने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली इतना ही कहते हैं, उनका जो मुकाबला शुरू हुआ और जो भी उनका मेला था या उस दिन वो वहाँ पे पहुँचे सारे, तो आयत नंबर 111 111 से ऑनवर्ड ये शुरू हो गई बात। और फिर फाइनली आयत नंबर 120 के अंदर हमने जाते हैं कालो आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, ये क्यों कहा इन्होंने, रब्बी हा मूसा व हारून कौला फिरऊन आमन तुम भी, यानी उन्होंने अपना जाहिर, इन्होंने क्या था, अब जो जादूगर थे जो मैजिशंस थे फिरौन के, इन्होंने ट्रिक की कुछ इस तरह से एक रिवायत में या बाज़ हिस्टोरियंस ने लिखा है कि इन्होंने कोई ऐसे ग्लास टाइप का कोई मटेरियल था उसके नीचे मर्क्यूरी बिछा दिया। मर्क्यूरी जो होता है थर्मामीटर वगैरह में जो यूज़ होता है, जो एक मेटल या एलिमेंट है, अब जब ये हीटअप होता है तो ये गर्म, जैसे हम थर्मोमीटर को मुंह में रखते हैं तो एकदम गर्म होके वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, हम नोट करें तो उसका टेम्परेचर वो दिखाता है, जिस विच मीन्स वो मर्क्यूरी स्प्रेड हो रहा है। तो इन्होंने कुछ इसी तरह की टेक्निक की और मर्क्यूरी डाल दिया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वही असार डाला, अपनी छड़ी डाली, अपनी स्टिक वहाँ पे ज़मीन पे, तो वो बड़ा अजदहा बन गई, और जब वो उन्हें खा गई तो ये जादू के जादूगर, क्योंकि जादूगर की वो लाइन थी उन सारे जो मैजिशंस थे, दे दैट वाज देयर आर्ट, उनको पता था ये कोई जादू नहीं है, क्योंकि जादू की अपनी अपनी एक टेक्निक होती है, कोई तरीका होता है, और जिसकी जो लाइन होती है वही सही मायनों में समझ सकता है प्रॉपरली कि अच्छा इसका ये वजह हो सकती है। और जादूगरों ने जब देखा, इन मैजिशंस ने, कि ये कोई आम जादू नहीं, ये वाकई इन रियलिटी कोई मुअज्जा है, क्योंकि ये उन सब में से किसी के भी कुव्वत और उसके बाहर था, उन्होंने फौरन कहा कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, आयत नंबर 121 और 122 के अंदर क्लियरली जादूगरों ने ईमान लिया है, वो सब के सब मुसलमान हो गए। और जब ये मुसलमान हो गए तो फिरौन ने इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया, कौला फिरौन, अब फिरौन ने क्या कहा, आमन तुम भी कबल अन आज़ाना लकुम, कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इनसे इन पे ईमान लिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने जादूगरों को धमकियाँ दी हाथ पांव काटने की, उनको गाली गलम को गलोच किया, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बहरहाल फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 130 ऑनवर्ड्स वाला, कद अखज़ना आला फिरऔना बिस्सिनीन व नक्सिम मिन समरात लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो अजाब नाजिल किए उनके, फिर आते हैं ये एक दूसरी जगह कुरान में पता चलता है और एक बाज़ रिवायात से, कि इनके ऊपर टोटल 9 आयात, यानी कि 9 निशानियाँ थीं जो अल्लाह ने 9 किस्म के अजाब बनू इसराइल के, ये मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त फिरौन पे नाजिल किए थे उसकी कौम पे। इनमें से पहला अजाब यहाँ पे जो जिक्र आ रहा है कि अल्लाह ने ऐसा तूफ़ान भेजा जिससे इनकी खेतियाँ तबाह हो गईं। फिर उसके बाद आगे चल के उनके लिए ऐसी टिड्डियाँ जो होती हैं, कोई सम ये जो जिसे ग्रास हॉपर कहते हैं गालबन, उनकी बहुत बड़े होल के होल बड़े जत्थे, यानी कि ग्रुप्स में की शक्ल में वो आ गए और फैल गई पूरी, यानी उस सराउंडिंग में उनके इलाकों में। और फिर एक दूसरी किस्म का कोई इंसेक्ट होता है जो खेतियों को तबाह कर देता है, वो अल्लाह ने भेजा, वो उनकी खेतियां तबाह हो गईं। फिर उसके बाद एक और मेंढकों को जो फ्रॉग्स होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा एम्पल तादाद में कसरत में ये वहाँ पे आ गए, यहाँ तक कि कोई बंदा अगर मुंह खोलता था तो कोई सुन एक हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो उसके मुंह में छलांग लगाता था फ्रॉग के अंदर चला जाऊँ किसी तरह, इतने ज़्यादा एम्पल कसरत से फ्रॉग्स वहाँ पर आ गए। और फिर जो उनकी जो वाटर पूरी लाइन्स थी, जो नहरें थी, कुएं थे, उनके मटके, यहाँ तक के जो पानी के भरे हुए थे उनमें, वो सब का सब पानी खून में तब्दील हो गया। अब ये जब भी कोई अजाब आता था, ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे, रोते धोते थे, बैग करते थे कि हमें माफ़ कर दें, अब बस ये अजाब दूर हो जाए तो हम ईमान ले आएंगे। लेकिन ऑफकोर्स जैसा कि हर ढीठ और हर, ये क्या कह सकते हैं, नाफरमान या मासी इंसान का जो दिमाग होता है वो इसी तरह होता है, वो एक तरफ़ा जब, या आगे चल के सूरह रूम के अंदर, सूरह अनकबूत में गलबन ये वाक किस्सा भी आता है, वो जब समुंदर के बीच में होते हैं और तूफ़ान आता है, जब घेरता है तो कहते हैं हम अल्लाह पर, एक अल्लाह पर ईमान ले आए, और जैसे ही अल्लाह वो तूफ़ान को रोक देता है, जब ज़मीन पे उनकी कश्ती एंकर हो जाती है, आराम से रुक जाती है आकर, तो फिर वो दोबारा अपनी इनात पर, अपनी दोबारा सरकशी पर उतर आते हैं, दे डिनाई द हक। और बहरहाल फिरौनियों जो थे इनके अजाब आए और सब कुछ हुआ, फिर आखिर फाइनली अल्लाह ने इन्हें पानी को, जो माउंट साइनाई का फिर मशहूर वाक्य आता है बहुत दूसरी जगह पे, आगे इंशाल्लाह सूरह रात में नहीं, सूरह ताहा में इंशाल्लाह आगे गालबन आएगा ज़रूर, वो फिर वहाँ डिस्कस कर लेंगे। आशूरा के दिन जो इनकी इन्हें फिरौन से जान छुड़ाई और अल्लाह ने इनको माउंट वो साइनाई पानी के अंदर रास्ते करके और इन्हें साइनाई पर उतरने के लिए फिरौन से इनको निजात दिलाई बनू इसराइल को। और फिर आगे अगर हम देखते हैं वर्स 143 के अंदर, वलम्मा जा मूसा अली मिकातेना वकल्लम और रब्बहू क़ाल रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, मूसा अलैहिस्सलाम को जब निजात मिल गई तो उनको फिर कोहे तूर पे बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, ए मेरे रब मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह सुबहाना व तआला ने कहा कल क़ाला लन तरानी, कि आप नहीं देख सकते मुझे। अब बाज़ लोगों का इस आयत से कन्फ्यूजन ये होता है दिमाग में कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, यानी कि मरने के बाद जन्नत में भी कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकेगा, जबकि बिल्कुल एब्सोल्युटली ये गलत बात है। कुरान की ही बहुत सी जगहों पे दूसरी, जैसे कि वो जो यौम नाजिरा इला रब्बिहा नाजिरा, कि उस दिन वो अल्लाह को देख रहे होंगे, और फिर आगे इला रब्बिहा नाजिरा साफ साफ लफ्ज़ों में आता है, या वो जो दूसरी आयत में आता है लद वाला दईना मजीद वाली में, कि उनको जब जन्नतियों को सब की सब अल्लाह ताला नेमतें अता फरमा देंगे और वो बोलेंगे और तुम्हें कुछ चाहिए, बोलेंगे नहीं हमें सब मिल गया, तो फिर वाला दईना मजीद अल्लाह अपनी तरफ से जो इजाफा करेंगे वो अल्लाह का दीदार होगा। और फिर बहुत सारी रिवायतों में इसके बहुत सारे दूसरे पता चलता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं। तो यहाँ पे कौल रबी अरिनी अनजुर इलैक जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो वो ज़ाहिर है कोहे तूर पे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी आपको देखना है इन अ सॉर्ट ऑफ वे, तो अल्लाह ने कहा यहाँ आप मुझे नहीं देख सकते दुनियावी आँख से, जन्नत में जब मोमिन अल्लाह को देखेगा तो वो वहाँ की आँख होगी, उस आँख को, उस जिस्म को कोई मौत वैसे भी नहीं आएगी, यहाँ की आँख में ये कैपेसिटी नहीं है कि अल्लाह को देख सके। इसीलिए सूरह बकरा में गुजरा था वो जो एक बनू इसराइल के ही पहले भी हठधर्मी की थी लोगों ने, और 72 के करीब जो लोग गए थे और उनको अल्लाह ने दीदार कराया तो वो वहीं मर गए थे और फिर वो दुआ से ज़िंदा हुए थे और वो वाक़ आता है, लेकिन ये कैपेसिटी ही नहीं है किसी आँख में कि वही इस दुनिया में अल्लाह को देख सके। फिर यहाँ चल के आगे पता चलता है कि फिर वहाँ गए तो बनू इसराइल ने बछड़े को सामरी जादूगर के कहने में आके और बछड़ा बनाया, उसकी पूजा शुरू कर दी, और इन सब के वाकयात आते हैं। लेकिन फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोई तूर से तो बहुत उन्हें शदीद गम हुआ और गुस्से में आके, यहाँ तक कि वलम्मा रजा मूसा इला कौमी, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लौटे तो गज़ब ना गुस्सा आया, सिफन कौला बिसमा खलफ तमुनी बिम्बाद अजल तो अमर रबिकाल खाजा बिरासी अखी ही, कि अपने भाई को हारून अलैहिस्सलाम को बालों से उनके पकड़ लिया। हारून अलैहिस्सलाम बेचारे बोले कौला इब्ना उम्मा इन्नल कौमा अस्तस्त अफूनी का कादु यकतुलू ननी, आप मेरा बाल, अरे मेरी माँ के बेटे आप मेरे बाल ना पकड़ें। ये बनी इसराइल जो है ये बहुत ही ढीठ कौम है बेसिकली, कि अगर हम वैसे गौर भी करें इनकी इतनी सारी अजीब कौम है ये, कि हर जगह कदम कदम पर ये फिसल जाते हैं, ये कोई वादा किया है इन्होंने और फिर अल्लाह के उसकी खिलाफ वर्जी की है, काम इलाहिया का यहाँ तक कि ये लोग मजाक उड़ाते हैं, इनमें तावीलात करते हैं, उसमें तहरीफ करते हैं, रद्दो बदल करते हैं। इन्हें पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने और इनको जब हुक्म हुआ था कि बैतुल मुक़द्दस में झुक जाना, ये जानबूझ के अकड़ते हुए गए और अल्लाह ने इन्हें कहा कि हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ना, बाकी पूरा हफ्ता यू कैन फिश, एंड दैट्स द डे व्हेन दे यूज टू डू हीला हुज्जत एंड पानी को जमा कर लेते थे और मछली को करते थे. और इसी तरह कोई तूर को उठाकर तौरात पर अमल का वादा किया, मगर वो अपने वादे को एवरी नाउ एंड देन उसको बहरहाल वो डिसरिगार्ड ही करते रहे और तोड़ते रहे. तो इनकी बनू इसराइल की ये एक नॉर्म था, एक ट्रेडिशन सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं, तो हमेशा से था ही. तो उसी में हमारे लिए, मुसलमानों के लिए भी बहुत सोच विचार की बात है कि आज क्या हमारे अंदर भी इसी किस्म के कुछ खसूसियात तो नहीं है. और यकीनन है, अल्लाह में इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए. इसके बाद आगे चल के इस आयत नंबर 172 में ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आती है. वाइज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना इला आखिर आयत. शुरू में जब बात हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और उनको चार दफ़ा अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह ने चार दफ़ा या बनी आदम या बनी आदम या बनी आदम या बनी आदम, चार दफ़ा अल्लाह ने उनसे खिताब पूरी बनी आश्रम, यहाँ से दोबारा बात वहीं पे आके सूरत कंक्लूड होती होने जा रही है बनो आदम की ही बात पे. बनो आदम मीन्स पूरी ह्यूमैनिटी, सबसे ये बात चल रही है. सबसे पहली इसके अंदर ये गौर करने की बात है, यहाँ पे अल्लाह ने सबसे पहले रिमाइंड कराया दोबारा, क्योंकि सूरह के शुरू में बनी आदम का वाक़या गुजरा था. तो यहाँ 172 आयत पे अल्लाह ने दोबारा वही बात दोहराई कि अल्लाह ने जब पूरी बनी आदम को उनकी पुश्त में से ज़ुर्रीम ज़ुर्रियतम औलादों को पैदा किया था, जब अल्लाह ने वाशादहुम उनको गवाह बनाया अला अनफुसीम उनकी अपने नफूस पर, यह आलम अरवा की बात चल रही है कि तमाम की जो रूहें थी जितनी भी दुनिया की ह्यूमैनिटी की, उन सबको अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से बनाकर वहाँ पे जब जमा किया और अल्लाह ने उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, सब के सब ने एक वो इन यूनानिमस फॉर्म में कहा कालू बला शहिदना, श्योर आप ही हमारे रब हैं, शहिदना हम इस बात की गवाही देते हैं. तो अल्लाह ने पहले ये गवाही जो वहाँ पे आलम अरवा में दी थी उसे रिमाइंड कराया. और फिर हम आगे देखते हैं कि एक पहले शख्स, ये जो एक रिवायत में आता है बलअम बिन बियावर का किस्सा, ये एक मशहूर शख्स था जिसको बहुत ज़्यादा, ये आयत नंबर 175 से लेकर आगे 178 तक चलेगा, वत्लु अलैहिम नबा लज़ी आतैनाहु आयातना फ़नसलख़ मिन्हा फ़तबअहु शैतान, कि अल्लाह ने इसको बहुत ज़्यादा इल्म और शर्फ अता किया था, लेकिन ये इतना बदबख्त और इतना नामरा था कि इसको इस इल्म को दुनिया के चंद जो मामूली पैसों के बदले बेच देता था, यानी बेसिकली क्योंकि यहाँ पे कहा था फतबाओ शैतान, शैतान ने उसको घेर लिया. तो ये अपने उस इल्म के होने के बावजूद कोई फ़ायदा ना पा सका. तो इससे एक बात जो पता चली कि इल्म अमल के बगैर कुछ नहीं होता, यानी जितना भी कोई बड़े से बड़ा आलिम होना का क्लेम करे या क्लेम ना भी करे, लोग किसी को कितना बड़ा आलिम समझे कि वो ये इतना बड़ा आलिम जा रहा है, असल में आलिम की डेफिनेशन आगे इंशाअल्लाह ताला इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के तहत आएगी, उस आयत में जहाँ पे अल्लाह ने कहा कि आलिम कौन होता है, मिन इबादिहिल उलमा कौन होते हैं, यक्षल्लाह इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह से की खशियत रखते हैं वो आलिम होता है. आलिम किसी डिग्री से, कोई विफाकुल मदारिस से कोई पढ़े 8 साल का कोर्स करके बोले आज से मैं आलिम बन गया हूँ, चाहे दुनिया की सारी हराम खोरियों पे लगा हुआ हो एब्सोल्युटली, लेकिन तो उससे कोई आलिम नहीं बन जाएगा. आलिम होने की निशानी अल्लाह ने खुद कुरान में बताई, और यहाँ भी इसी के ऊपर बात हो रही है कि इल्म अमल दो अलग अलग चीज़ें हैं, बग़ैर अमल के इल्म बेकार है. इसीलिए अरबों का एक बहुत मशहूर यहाँ पे एक शेर का कुछ किसी किताब में मिलता है, लौ कान फिल इल्मी मिन दून तुका शरफ अल कान अशरफ खलकल्ला इब्लीस, क्या मतलब है शेर का, अगर तकवे के बगैर इल्म में कोई शर्फ कमाल होता तो अल्लाह ताला की मखलूक में से इब्लीस सबसे ज़्यादा मुअज्ज़िज़ होता. क्यों, अब ये देखें इब्लीस के बारे में यूनानिमस तमाम के तमाम दुनिया के उलमा का इत्तफाक है कि इब्लीस जो शैतान था वो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम था, इंसानों जिन्नात मखलूकात फरिश्ते मलाइक सब के सब, ये सबसे बड़ा, ये एक जिन था लेकिन ये सबसे बड़ा दुनिया का आलिम भी था और सबसे बड़ा आमिल भी था, इससे ज़्यादा अमल करने वाला कोई दुनिया में नहीं था उस वक्त, और आबिद भी था, सबसे बड़ा इबादत गुजार भी था, इससे बड़ा इबादत गुजार पूरी दुनिया में उस वक्त कोई नहीं था इस इबलीस से बढ़कर, लेकिन इसमें सिर्फ एक क्वालिटी नहीं थी, ये आशिक नहीं था। जब अल्लाह ने कहा इसकुलना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस, सब के सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इसे इसकी अना ने, इसके तकब्बुर ने इसे मार दिया। और इसने कहा खलकतनी मिन नारे व खलकतहू मिन तीन, मैं आग से बना हुआ, ये लोग तो मिट्टी से बने हुए, इनको मैं इससे मैं कैसे सजदा करूं। तो बहरहाल इसको इसी हठधर्मी ने मरवाया, ये आशिक क्योंकि नहीं था, अल्लाह की बात को इस पर इसने दलील झाड़ी। खैर इस पे बात इंशाल्लाह बाद में होगी। यहाँ पे जो अगली आयत नंबर 179 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये कंक्लूजन की बात है जिसकी शुरू में बिल्कुल तस्करा हुआ था। यहाँ पे इबलीस और उसका जिक्र आया जिसने आदम अलैहिस्सलाम, और शुरू में भी इस पूरी सूरत के अंदर एक इतना ज़बरदस्त बैलेंस नज़र आता है, शुरू में आदम अलैहिस्सलाम और फिर बाकी अम्बिया के किस्से और वो बयान करने के बाद फाइनली आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर एंड, वो आयत नंबर 179 जो उस चार निदा जो अल्लाह ने चार दफ़ा कहा था, या बनी आदम या बनी आदम या बनी आदम या बनी आदम, पहली में कहा था इनके लिबास उतरवाए, दूसरी में कहा था शैतान ने इन्हें धोखे में डाला, तीसरी में फिर उनकी खुजू जीनत व जीनत का जिक्र आया था। ये सब इनके अंदर फाइनली हुआ क्या, फिर बनू आदम मीन्स जैसे डिस्कस हुआ था पूरी ह्यूमैनिटी, तो इस आयत नंबर 179 में पता चलता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस। ये एक बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें सहाबी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलेंगे कि अपनी औलाद बनू आदम में से खींच खींच के, जैसे कोई किसी को, कोई ताकतवर किसी कमज़ोर को उठा उठा के कहीं फेंक रहा होता है, कोई पहलवान या कोई रेसलर, तो इस तरह ही अपनी औलाद में से एक एक करके चुन चुन को लोगों को उठाएंगे और जहन्नुम की आग में फेंकते जाएंगे। और ये इस आयत इसकी तरफ इशारा करती है कि हर उस बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि हर हज़ार में से 999 यानी कि 999 आउट ऑफ एवरी 1000 उस आग में फेंकेंगे वो। और ये आयत में इसी उन उसका क्या तस्करा आता है, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अय्युनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनके पास दिल हैं, कल मुख्तसरन इस पर बात हुई थी इसलिए ज़्यादा डिटेल में शायद ना जाए, तो इनके पास दिल हैं लेकिन ये फिर भी बात को समझते नहीं हैं, इनके पास आंखें भी हैं ये देखते हैं लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं देखते, और कान भी हैं लेकिन गलत कामों के सुनने में लगाते हैं, सही चीज़ नहीं सुनते। तो इनकी मिसाल अल्लाह ने दी जानवर की तरह, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा बदतर लोग हैं, उलाइका हुमुल गाफिलून, और ये उन गाफिलों में से हैं। तो हर हज़ार में से 999 बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक इन लोगों में से हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं। और अगर हम गौर करें तो आज अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, इसको टाइम्स डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो अब पूरी दुनिया में आज आप अगर हम मुसलमानों के अलावा मिला लें तो 7 मिलियन से ज़्यादा लोग जन्नती नज़र, इस कैलकुलेशन के मुताबिक, जस्ट हाइपोथेटिकल, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अजम्पशन के तौर पे अगर गौर करें तो बड़े डरने की बात है इसमें ज़ाहिर है यकीनन। और फिर आगे आयत नंबर 182 में अल्लाह ने मोहलत की बात की, और फिर आगे आयत नंबर 187 के अंदर अगर हम गौर करें तो इसकी इल्म की, जो क़यामत आने का इल्म है बेसिकली, यह सलून का निसाति अयान मुरसा कुल्लिनमा इल्मुहा इंदा रब्बी, के इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला को है और किसी को, इंदा रब्बी, ये क़यामत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तो ये कोई नहीं कह सकता मैं क़यामत से पहले पहले मैं तो जी रेडी हो जाऊँगा और मैं अपनी तैयारी कर लूँगा, क्योंकि उसका इल्म तो किसी को और है ही नहीं। इसीलिए फिर नबी अलैहिस्सलाम इसके आगे आयत नंबर 199 में का, क्योंकि ज़ाहिर है कि इल्म क्योंकि किसी को है नहीं तो पहले से तैयारी की ज़रूरत है, और सबसे बड़े अखलाक तो ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम की, और उन्हीं के थ्रू हमें हुक्म दिया जा रहा है कि खुज़िल अफ़ो व अम्रु बिल मारूफ़ आरिज़ अनिल जाहिलीन, के अपने आप को अपने अंदर उफू यानी पाकदामनी और मॉडेस्टी, जो लिबास आदम अलैहिस्सलाम के उतारे थे बेसिकली, वो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन और लिबरलिज्म के नाम पे, उसके द्वारा अगेंस्ट जाने की अपनी उफू को इख्तियार करें और नेक काम करने का हुक्म दें, और जाहिलों से कफारा किनारा कर लें, बिल्कुल साइड पे हो जाएं। इन जाहिलों से बहस बेकार है जाहिर है, लेकिन हर हज़ार में से 999 आजकल क्योंकि हमें वही मिलेंगे इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनसे बिल्कुल छुटकारा तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। और फिर फाइनली आयत नंबर 204 के अंदर ये कुरान का जो मौजे की बिल्कुल इस सूरत के शुरू में बात हुई थी कि ये इतना जो अजीम मौजा है और इसकी अजमत का जिक्र यहाँ पे आ रहा है। फाइनली जो सूरत एंड हो रही है, वाइज़ा कुरियल कुरान फस्तमेउ लहू व अनसितू, कि जब कुरान की तलावत चल रही हो, जब कुरान का जिक्र चल रहा हो, तो बिल्कुल खामोशी से फस्तमेउ सुनो व अनसितू, खामोश रहो, यानी कोई एक डॉट ज़रा बराबर आवाज़ ना आए। यही वजह है कि अगर हम देखते हैं नुमान बिन साबित हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने इसी आयत की वजह से ये फतवा दिया कि जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं जमात के साथ, नमाज बा जमात में जब इमाम तिलावत कर रहा होता है, तो मुक्तदी के लिए खामोश रहना बेहतर है, यहाँ तक कि वो सूरह फातिहा भी ना पढ़े। बाज़ फुकहा के नज़दीक सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। और हमारे यहाँ भी यही इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने कहा कि नमाज के उसको सजदा सहव लाजिम हो जाएगा अगर वो खुद फातिहा नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वो इमाम के साथ होगा तो, क्योंकि ये आयत में आ रहा है वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमेउ लहू वअनसितू, जब कुरान की तिलावत कोई कर रहा है तो तुम खामोशी के साथ इसे सुनो। इस वजह से ये ज़रूरी है कि इमाम की तिलावत के दौरान मुक्तदी ना बोले। इस बात पे आके आज सूरह आराफ को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, कल सूरह अनफाल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वाकिर दावाना अनिलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।